اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ایسے دن ہمارا درس واقع ہو رہا ہے کہ جس دن نے ہمیں موت سے اور نزدیک کر دیا. ایک تو موت خود تیز رفتاری سے انسان کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے اور دوسری طرف انسان بھی اس کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی یاد چاہے کوئی شخص بیمار ہو یا صحت مند, مستحب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے. اس میں فرق نہیں ہے کہ بالکل مرنے کے قریب ہوا ہوا ہے اور مریض ہے اور بستر مرگ پر ہے, بلکہ تھوڑی آواز بڑھائی, بلکہ تندرست کے لیے بھی مستحب ہے. بھی مکروہ ہے کہ انسان موت کو اپنے سے بہت دور خیال کرے. موت کو خود سے دور خیال کرنا یہ بھی کراہیت رکھتا ہے. اچھا, یہ بات بھی مستحب ہے کہ انسان اپنا کفن تیار رکھے. حد جی. اور یہ بات بھی مستحب ہے کہ انسان اپنی قبر کو آمادہ رکھے, خواہ تندرست ہو خواہ بیمار. یعنی یہ جو اس وقت صحت مندی اور تندرستی کا عالم ہے, اس میں بھی اس بات کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان اپنی قبر کا انتظام رکھے. اپنے بہت سے تجربات جو ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو صرف تشویق و ترغیب کے لیے, کہ ہم کچھ دوستوں نے ایک دفعہ سوچا تھا, اس کو عملی جامہ پہنانے کا موقع تو نہیں مل سکا, کہ اتنی سال کی مثلاً اگر ہماری دوستی ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ قائم رہے, تو ہم بہت سارے قبرستانوں کا کے متعلق معلومات لی گئیں کہ کسی جگہ ایک ساتھ کچھ قبر بک کرائی جا سکے, تاکہ ایک دوسرے کو اس سے سہارا بھی رہے. جب اس دنیا میں ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا ہے تو مرنے کے بعد بھی قریب قریب رہا جائے. لیکن بہرحال اس طرح کا کوئی قبرستان اول تو دستیاب نہیں ہوا جہاں اتنی پہلے سے بکنگ ہو, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر قبر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان وہاں جا سکتا ہے, اس میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر سکتا ہے اور مختلف امور وہ ہے وہ انجام دے سکتا ہے جو کہ مستحبات میں سے ہیں. لیکن ایسا کوئی مل نہیں سکا جہاں پہلے سے ان کو تیار کروا کے اور آمادہ ہوا جا سکے. زیادہ تر قبرستان اس انداز کے تھے کہ نہیں, آپ میں سے جو پہلے مرتا جائے اور وہ یہاں پر آتا جائے, البتہ ایک سیکوینس میں یا بالکل ایک ساتھ قبروں کا ملنا یا بک کرانا مشکل تھا, اور جہاں پہ ممکن تھا وہاں ہم نے خود بک نہیں کروائی کیونکہ کچھ بھوت بنگلے جیسا وہاں پہ نمونہ پیش کیا جا رہا تھا قبرستان کا. تو بہرحال اچھا, ایک تو یہ بھی ہے کہ کفن تیار رکھے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی قبر کو آمادہ رکھے. یہ سب موت کی تیاریوں کے اندر چیزیں شامل ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ انسان سدر یعنی بیری کے پتے اور کافور یہ بھی آمادہ رکھے اپنی اسی تندرستی ہی کے زمانے میں. پیغمبر اسلام سے جب ایک بار یہ چیز پوچھی گئی کہ پیغمبر اسلام یہ بتائیے کہ کون شخص سب سے زیادہ سمجھدار ہے, بلکہ غالباً پیغمبر نے خود ہی یہ سوال لوگوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند کون ہے, تو بہرحال یہی جواب ملا کہ اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا, جو کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے, اور وہ شخص بھی سب سے زیادہ عقل مند ہے جو دوسرے لوگوں کی نسبت موت کے سلسلے میں بہت زیادہ تیاری کرنے والا ہوں. وَأَشَدُّهُمْ اِسْتِعْدَادًا. اور یہ بات بھی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی آئندہ کل کا آنے والا دن اپنی زندگی میں شمار کیا اس نے موت کو اپنا حقیقی مقام نہیں دیا. یعنی اگر ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ ہم کل زندہ رہیں گے اور اس کے مطابق ہم نے ایسی پلاننگ کر رکھی ہے سالہ سال کی اور موت کو بہت دور خیال کر رکھا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے موت کو صحیح مقام نہیں دیا. اور مولا بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے, ایک دفعہ نہیں بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ موت کتنی تیزی کے ساتھ مومن کے پاس آ رہی ہے اور دنیا میں اور مومن جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ تگ و دو کے اندر مبتلا ہے, بہت زیادہ تگ و دو اس کی دنیا ہی کی طرف ہوتی جا رہی ہے. تو اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے تو یہ بہت ہی زیادہ نہ صرف یہ کہ وہ موت زندگی کے ان جھمیلوں سے اپنے آپ کو ان کو اس کو زندگی کے جھمیلے بہت برے لگنے لگیں گے بلکہ وہ ان کو بہت حقارت سے دیکھنا شروع کر دے گا. یعنی جو میں اپنے الفاظ کے اندر آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں, مولانا نے دیکھا کہ اگر وہ بہت تیزی کے ساتھ اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اتنی تیزی سے موت اس کی طرف آ رہی تو اس کو دنیا بہت بری لگنے لگے. یہ بھی اس طرح بات میں سے ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کفن کا تذکرہ کیا, جس طریقے سے ہم نے قبر کا تذکرہ کیا, بیری کے پتوں اور کافور کا تذکرہ کیا, اسی طریقے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنا وصیت نامہ بھی تیار رکھے. وصیت نامہ تیار نہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. دیکھیے اب کیونکہ ہم فقہی مسائل بھی, کیونکہ یہ سب چیزیں موت کی تیاری میں شامل ہیں. اور وصیت نامے کے سلسلے میں ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنا وصیت نامہ تیار کرے اور ان افراد کے بارے میں کوئی وصیت نہ کرے کہ جن کو میراث سے کوئی حصہ نہیں ملنا ہے. دیکھیے ان افراد کے بارے میں اگر کسی نے کوئی وصیت نہ کی جن کو اس کی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملنا ہے تو اس نے اپنے اعمال کو گناہوں پر ختم کیا. یعنی بہت سارے دیکھیے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کو میراث میں سے کچھ نہیں ملنا ہوتا, ان کے لیے ایک بٹا تین حصے کے اندر سے وصیت کر کے وہاں مومن جائے. اور بہتر یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے متعلق بھی وصیت کر کے جائے کہ چاہے انہوں نے اس سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کر رکھا ہو. دیکھیے مستحبات میں سے سب یہ چیزیں ہیں اور یہ بات بھی مستحب ہے. دیکھیے ابھی سارے فقہی مسئلے آ رہے ہیں اور اس کے اندر کتنے اخلاقی پیغامات بھی ہیں کہ انسان جب اس کی آخری عمر شروع ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ خود بھی صدقہ دے اور دوسروں سے بھی یہ بات کہے کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ دے. اچھا وصیت کے سلسلے میں خاص بات پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام نے خاص طریقہ وصیت کا بتایا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مرتے وقت اچھی وصیت نہ کرے, اچھی وصیت اگر اس نے مرتے وقت نہ کی تو یہ اس کی عقل اور مروت میں کمی کا سبب بنے گی. اور وہ کیا ہے, جب پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اچھی وصیت سے کیا مراد ہے, کہا کہ جب موت کا وقت کسی کے قریب آ جائے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں تو وہ ایک خاص دعا پڑھے. اور یہ اصل میں یہ جو دعا ہے یہ مرنے والے کے لیے ایک عہد و پیمان ہے, یہ جو خاص دعا ہے. اچھا پھر ایک پیغمبر اسلام نے خاص دعا بتائی جو کہ عربی میں ہے اور ہم آپ کو وہ تحریراً لکھ کے دے دیں گے, جو خواتین اس کے نوٹس تیار کرتی ہیں تقریباً آدھے پونے صفحے کا اس میں جگہ چھوڑ دیں, ہم وہ اس کے اندر عربی عبارت اس کی لکھ دیں گے. یہ وہ مرنے والے کا عہد و پیمان ہے. اچھا چھٹے امام کی بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جس عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے یہ سورہ مریم کی 87 آیت سے ثابت بھی ہو جاتا ہے, لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. ایسے اشخاص کو شفاعت کا کوئی حق نہیں ہے जिनके पास खुदाए रहमान की तरफ से जिन्होंने अहदो पैमान ना किया हुआ हो। सूरह मरियम की आयत नंबर 87 से पैगंबर इस्लाम की इस बात की तस्दीक होती है। अच्छा, पैगंबर इस्लाम ने इस अहदो पैमान के मुतालिक ये जो पूरी वसीयत के सिलसिले में जो ये बात कही है उसमें मौला से ये बात इरशाद फरमाई मौला कायनात से कि अहली तुम इस बात को अपने पल्ले बांध लो और अपने अहले बैत और अपने शियों को भी इस चीज की तालीम दो। और फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम के मुझको भी जिब्राइल ने इस चीज की तालीम दी थी। और उसके बाद फिर इस पूरे अहद पैमान को शेख तूसी ने अपनी किताब मिसबाहुल मुतहज्जिद में इस पूरे अहद पैमान को तफसील के साथ जिक्र किया है। आधे सफे का या पौने सफे का तकरीबन है ये अहद पैमान, इसका भी वसीयत के अंदर तस्करा किया जाए और ये लिखकर भी कब्र में अपने साथ रखा जा सकता है। अच्छा, अब देखिए दुनिया के अंदर हम ये बात देखते हैं कि दुनिया की हर चीज अपने कमाल की तरफ आगे जा रही है। जमादात हैं वो नबातात का जुज बन रहे हैं, हैवानात हैं वो जो हैवानात हैं वो इंसान की गजा बनकर कमाल को हासिल कर रहे हैं। तो इंसान को भी चाहिए कि वो मरकर कमाल को हासिल करे। अगर उसने अपना इख्तिताम नेक अमाल पर किया है तो कमाल की तरफ इंसान जाएगा, वरना उसका खात्मा पस्ती की तरफ होगा। यानी किसी भी सूरत किसी भी शख्स को करार कोई भी नहीं। हत्ता कि आप मैं एक जुमला और आगे बढ़कर कह दूं कि जन्नत में जाकर भी करार हासिल नहीं होगा, बल्कि जन्नत के मुतालिक से बात मिलती है वलिदैन मजीद, वहां पर भी रोज बरोज नेमतों में इजाफा ही होता चला जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि बस एक आपको मुकाम मिल गया बस उसके अंदर बस फिर उसी के अंदर हमेशा हमेशा रहना है, नहीं, वहां की नेमतों में मुसलसल रोजाना इजाफा होगा। तो बहरहाल उस शख्स के लिए कि जो दुनिया से सबक सीखे, बहुत बड़ा इस बात में पैगाम है, ताकि मौत फिर उसके लिए कमाल का एक जरिया बन जाए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जमादात कमाल हासिल करते हैं नबातात की खुराक बनकर, और नबातात जो है वो खुराक बन जाते हैं हैवानों की, और हैवान कमाल हासिल कर लेते हैं जब वो इंसानों की गजा बन जाते हैं। अब इंसान फकत एक ऐसी चीज है कि जब उसने नेक अमल किए तो उसको आगे से आगे बढ़ते रहना है ताकि वो कमाल की मंजिलें तय करे, वरना फिर वो मनफी तौर पर कमाल हासिल करेगा यानी पस्ती की मंजिलों को तय करेगा। अच्छा, देखिए मौत की इससे पहले भी हमने कई अकसाम बयान करते रहे हैं, आज दो अकसाम का हम तस्करा और करते हैं। मौत की दो अकसाम और भी हैं। एक कही जाती है मौत की किस्म जिसको कहा जाता है कि वो है मौत मशरूत, जिसको मौत मुअल्लक भी कहते हैं और गैर तबई मौत भी कहते हैं। मशरूत मौत किसी न किसी चीज से वो मौत लिंक्ड है, या जिसको मुअल्लक भी कहते हैं, या जिसको गैर तबई अननेचुरल या खुदा की तरफ से जो गैर हतमी लिखी गई है वो भी इसको कहा जाता है। मसलन ये वाली जो मौत है ये सदका देने से टल जाती है, ये वाली मौत जो है कोई नेकी करने से टल जाती है, ये वाली मौत जो है वो सिला रहमी करने से टल जाती है, ये वाली मौत जो है वो वालदेन के साथ नेकी करने से टल जाती है। और इन्हीं चीजों का अगर उल्टा कर दिया जाए तो मौत जल्द भी आ जाती है। यानी यही सब चीज है, यानी ये ऐसी मौत है कि जिसको कहा जाता है मशरूत मौत, ये कुछ चीजों से मुलहक है, वो अगर अंजाम दे ली जाए तो टल जाती है, उनकी मुखालिफत कर ली जाए तो जल आ जाती है। मौत की दूसरे किस्म में जिसको हतमी मौत कहा जाता है या जिसको तबई मौत भी कहते हैं, बिल्कुल फिक्स मौत जो होती है ये नाकाबिले ताखीर। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात बयान फरमाते हैं कि गैर हतमी मौत से मरने वालों की तादाद हतमी मौत वालों से कहीं ज्यादा है। यानी असल में जो लोगों को मौत जो आ रही है ये खुदा की तरफ से जो एक फिक्स और हतमी मौत थी जो लिख दी गई थी, ये वो वाली मौत नहीं आ रही लोगों को, बल्कि अपने गुनाहों के बायस जिन्होंने अपनी उम्र को कम कर लिया है ज्यादातर ऐसे अफराद हैं कि जो पहली वाली किस्म के अंदर जाते हैं। हद तक के देखिए जहां तक मिलता है, मैंने इससे पहले भी कहा था कि देखिए ये जितनी भी बहरहाल इस वक्त मेडिकल साइंस बड़ी तरक्की कर रही है और जनाब लोग सेहतमंदी के असूलों की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक कहा जाता है कि जैसे शेखुर रईस बू अली सीना, इनसे बढ़कर तो कोई भी डॉक्टर और तबीब उस जमाने में बड़ा नहीं था जिन्होंने तिब के ऊपर अल कानून के नाम से एक बहुत ही मारकतुल आरा उस जमाने में किताब लिखी थी। और आपको खुद पता है कि शेख उर रईस बोली थी ना कि कुल उम्र कितनी थी, फकत 49 साल, 49 ईयर्स, सिर्फ इतनी उम्र, यानी जो जमाने की तिब को सबसे ज्यादा जानने वाला शख्स था उसकी उम्र फकत 49 साल थी। और उसके अलावा कितने ही ऐसे अफराद थे जिनका तिब से दूर दूर का वास्ता नहीं था, जो तिब के किसी एक कानून से भी वाकिफ नहीं थे, वो शेख उर रईस बोली सीना से दुगनी दुगनी उम्र पाकर इंतकाल करके गए। तो बहरहाल हर सूरत में ये बात याद रखनी है कि मौत बिलाखिर आनी है, चाहे कितनी तिब्बी चीजों का ख्याल कर लिया जाए। इसके अंदर खुदा ना खास्ता ये वाला तासुर ना हो कि फिर तो क्या फायदा हमें, जैसे कि अक्सर लोग फिर कहने लगते हैं, नहीं, क्योंकि परवरदिगार आलम की तरफ से एक अमानतन एक चीज हमको दी गई तो उसकी हिफाजत बहरहाल करनी। तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक वाकया नकल किया गया है एक बादशाह का। बादशाह ने एक बहुत ही बेहतरीन महल बनवाया और महल बनवाने के बाद जब उस महल को खोला गया तो वहां पे एक विजिटर्स बुक भी रखवा दी कि जो भी इस महल को देखने के लिए आएगा वो कुछ ना कुछ उस मुतालिक अपने कमेंट्स लिखेगा। तफसीर रूहुल बयान, लोग आते गए, उसके अंदर बहुत हजारों लोगों ने अपने तारीफी कलमात लिखे क्योंकि ऐसा नमूने के तौर पर बादशाह ने बनवाया था। एक शख्स आया और उसने कहा कि इसके अंदर दो ऐब हैं, बस ये लिख के चला गया। बादशाह ने अपने हरकारे दौड़ाए, बिलाखिर उस शख्स को पकड़ लिया गया और जान की अमान दी गई कि तुम्हें कुछ कहा नहीं जाएगा लेकिन तुम वो ऐब बताओ। उसने कहा कि बहरहाल अगर जान की अमान देते हैं तो मैं इस महल के ऐप आपको बताना चाहता हूं। पहला ऐप तो यह है कि बिल आखिर यह मकान गिर जाएगा, बिल आखिर यह महल गिर जाना एक दिन और फना हो जाना। दूसरा इसके अंदर एक बड़ा ऐप यह है कि इसका मालिक इससे जुदा हो जाएगा, ये उसके पास नहीं रहेगा। फकत और फकत, उलमा ने इस बात को लिखा है और उसके बाद कहा है कि देखिए फकत आखरत का घर ही एक ऐसा घर, लहू मुखबत दार, कि बहरहाल जन्नत जिसको कभी गिरना है और ना ही उसका मालिक उससे कभी जुदा होगा। और बहरहाल ये बात भी है कि अगर कोई शख्स अपनी आखरत को बना ले, अब उसके लिए फकत खुशी ही खुशी है। यानी हमने कभी कोई ऐसा मरने वाले नहीं देखे जिनके सामने यकीनी मौत थी और वो अपने मरने की खुशी का जश्न मना रहे थे। अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन ने उनकी जिंदगी की जिंदगी में जो दिया बुझाने का वाकया था, दिया बुझाकर उनकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनियां बखेर दी और वो भी इतने ज्यादा खुश हो गए इस बात से। वो जो शेर है ना किसी का कि खुशी का वक्त है गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी के वक्त में क्या काम जलने वालों का। तो बहरहाल क्योंकि अपने सामने अगर से मौत भी नजर आ रही थी लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अपनी आखरत बना ली थी लिहाजा खुशियां ही खुशियां थी। छठे इमाम से भी ये सवाल पूछा गया कि मौला ये बात बताइए कि ये जो आपने कहा कि मुलाकातें खुदा से अगर कोई शख्स खुश नहीं होगा तो खुदा भी उससे मुलाकात करके कोई खुशी महसूस ना करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं मौला कि जान निकलना तो हमारे लिए बड़ा सख्त है और हम मौत से डरते भी हैं, तो क्या हम उन अफराद में शुमार होंगे जो लिकाउल्लाह से कराहियत करते हैं, खुदा से मुलाकात को पसंद नहीं करते। और आपने यही कहा अभी कि जो शब्द खुदा से मुलाकात को पसंद ना करे खुदा भी उससे मुलाकात को पसंद ना करेगा। तो मौला ये बताइए, देखिए बिल्कुल वैलिड सवाल है और सबके दिमाग में आता है, कौन है जो मौत को खुशी खुशी गले लगाने को तैयार है। तो इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि हमारा मानने वाला जिस वक्त उसकी मौत का वक्त करीब आता है और वो पैगंबर इस्लाम और आइमा अधार को देखता है तो उनके अनवार के विसाल में अपनी जान दे देता है। यानी उससे पहले तक हो सकता है कि वो करहियत कर रहा हो लेकिन जैसे ही इनके अनवार आलिया का मुशाहिदा करता है फौरन उनकी मुलाकात के शौक में उसी वक्त वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उन अपने खुदा से मुलाकात के लिए राजी और खुश हो जाता है। और एक और रिवायत के अंदर भी बात बयान की गई है कि मरने के फौरन बाद मोमिन किसी हवा की मानिंद अपनी पिछली दुनिया को भूलकर बहिश्त और बहिश्तियों में मशगूल हो जाता है। अच्छा, दूसरी रिवायत में भी इमाम ने कसम खा के कही ये बात कि हमारा शिया उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि वो हौजे कौसर से सैराब ना कर दिया जाए, जब तक कि उसे हौजे कौसर का जायफा ना चखा दिया जाए। तो बहरहाल परवरदिगार आलम इतना ही मेहरबान है, अपने खौफ को कम करने की कोशिश कीजिए और बहरहाल जो उसके अहकाम हैं उनकी इताअत कीजिए और जो भी उसने जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया उससे अपने आप को बचाइए। नेक अमाल के साथ फिर परवरदिगार से मुलाकात का शौक खुद ब खुद पैदा हो। लवामे उल बैनात नामी एक किताब है, उसके अंदर एक बुजुर्ग के चेंज हो जाने का एक उनकी जिंदगी में जिस बात से इंकलाब आया वो उस किताब के अंदर एक वाक्य नकल किया गया है कि एक जमाने में कहत पड़ रहा था और लोग भूख से रो रहे थे और बिलक रहे थे और पानी को मोहताज हो गए थे, खाने को मोहताज हो गए थे कि उस कहत के जमाने में गुलाम को देखा गया कि जो बहुत ही खुशो खुर्रम था। लोगों ने उसके खुशो खुर्रम होने की वजह पूछी कि लोग तो भूख से मर रहे हैं और रो रहे हैं और तुम खुश हो रहे हो। उसने कहा कि मुझे किस बात की फिक्र, मैं तो एक ऐसे आका का गुलाम हूं कि वो जितना चाहे अनाज मुझको दे सकता है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं ये जुमला सुनकर एक बड़ी अजीब और गरीब कैफियत के अंदर गिरफ्तार हो गया और मैंने खुद से कहा कि तुमने अपनी इस पूरी जिंदगी में कोई एक लम्हा भी ऐसा गुजारा है जो तुम अपने परवरदिगार के वजूद पर खुश हुए हो। यानी इंसान अगर वाकई सोचे कि क्या जिस तरह से वो गुलाम अपने आका के वजूद पर खुश था, क्या कोई एक लम्हा भी जिंदगी का ऐसा हमने गुजारा है कि जिसमें हम अपने परवरदिगार के वजूद पर खुश हुए, और क्या कभी हमने सच्चे दिल से इबादत खुदा कभी अंजाम दी कि वाकई शुक्रगुजारी का एक जज्बा दिल के अंदर पैदा हुआ और एक सजदा बेख्तियार किया। और फिर उसके बाद उनकी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आया उस गुलाम की वो बात सुनकर। देखिए एक जुमला उलमा ने लिखा है शहीद दस्तगाबी शिराजी ने और खुद लिखा है अपनी तकरीर में, उन्होंने कहा कि मिसाल तो देखिए इतनी अच्छी नहीं लेकिन बहरहाल कि कुत्ता जो जानवर है वो अपनी नेमत देने वाले को ज्यादा अहमियत देता है या नेमत को ज्यादा अहमियत देता है। फिर फरमाते हैं शहीद दस्तगैर कि कुत्ता जितनी नेमत देने वाले की पूजा करता है ना उतनी नेमत की नहीं करता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुत्ते का मालिक उसको खाना देना भूल जाता है, तब भी कुत्ता यह नहीं करता कि उसके मालिक के पास से भाग जाए बल्कि वो वही तवाजो उसके सामने तवाजो और इंकसारी करता है, वहीं दो मिलाता रहता है अगर से हैवान है। तो फिर शहीद दस्तगीर फरमाते हैं कि इंसान तू तो अशरफुल मखलूकात है लेकिन तू कितना एहसान फरामोश है कि नेमत देने वाले को तो भूल जाता है और फकत नेमत की पूजा करने लगता है। जब ये बात कही जाती है कि जो फिशार कब्र है उसका एक बहुत बड़ा सबब जब हम कब्र के अंदर मुर्दे को दफन कर देंगे उस वक्त बहुत सारी चीजों का तस्करा होगा, उस वक्त भी ये वाली बात आएगी कि फिशार कब्र का एक बहुत बड़ा सबब कुफरान नेमत भी, नेमतों का कुफरान करना। कितने खुदा ने हमको नेमतें दी हैं लेकिन हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। तो बहरहाल गनीमत है कि इंसान जवानी में जितना भी हो सके आमाले नेक को अंजाम दे ले। और ये भी यहां तक भी रिवायत के अंदर ये बात आई है कि जिसने भी अपनी जवानी के जमाने में अपने आमाल को अंजाम दिया या मसलन नमाज शब पढ़ी, इल्म दीन हासिल किया, अपने दिल इल्म दीन हासिल करने में अपनी ताकतों को सर्व किया, तो जब जिस वक्त वो बूढ़ा हो जाएगा और इन आमाल के अंजाम देने से वो काफिर हो जाएगा तो उस वक्त भी उसको वही जवानी के आमाल का सवाब दिया जाता रहेगा कि जो आप लोगों का मशक्कत उठा के मदरसे आना। जब कभी ऐसी कैफियत होगी कि बुढ़ापे में बहरहाल कवाय जो है वो मुजमाइन हो जाते हैं और इंसान कमजोर हो जाता है और पहली जैसी ताकत उसकी बाकी नहीं रहती तो यही सवाब सारे का सारा लिखा जाता रहेगा। تو بہرحال روایت میں یہ بات آئی ہے کہ وہ تمام اشخاص کے جن کی عمر 40 سال نہیں ہوئی, اور آپ میں سے تو ماشاء اللہ کسی کی بھی نہیں ہوئی نہ کبھی ہوگی, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی عورت آج تک صدر پاکستان نہیں بن سکی کیونکہ اس میں عمر کی شرط ہے 40 سال کا ہونا. تو بہرحال زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان عبادت خدا کو انجام دے لے تاکہ بڑھاپے میں پھر ان تمام چیزوں کے ثواب اور فائدوں کو حاصل کرے. اچھا اب یہ اس تمہید کے بعد اب ہم اپنے مسائل سے مربوط ہو جاتے ہیں. البتہ چند ایک اہم فطری مسئلے ہیں لیکن وہ بھی کبھی نہ کبھی کیونکہ جب کہ اتنے مظالم بڑھ گئے ہیں کافروں کے بھی اور بڑی تعداد میں صاحبان ایمان کو شہید بھی کیا جا رہا ہے, تو چند ایک دو چار صرف اس مسئلے سے متعلق بیان کر کے پھر ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. دیکھیے یہ بات اس سے پہلے بھی بیان ہوئی تھی کہ شہید کا لباس اتار کر اس کو کفن پہنانا یہ جائز نہیں, شہید کو اسی لباس کے اندر دفن کیا جائے گا. ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اوپر سے اس کو ایک اور کفن پہنا دیا جائے لیکن اس کا وہ لباس وہ خون آلود وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. اچھا جو افراد بھی, یہ بات بھی ایک دفعہ آ چکی ہے کہ جو افراد بھی میدان جنگ میں زخمی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اسپتال میں شفٹ کر دیے جائیں اور پھر اسپتال میں آ کر وہ شہید ہوں تو اگرچہ ثواب شہید کا پائیں گے لیکن فقہی اعتبار سے شہادت کے احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے, یعنی ان کو غسل اور کفن یہ دیا جائے گا. اچھا اسی طریقے سے وہ تمام لوگ کہ جو کہ خواہ وہ میدان جنگ میں اپنے مورچے کے اندر آرام ہی کیوں نہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی گولہ باری بھی نہیں ہو رہی ہے اور کوئی وہ جنگ کے لیے آمادہ بھی نہیں ہے, فقط سو رہے ہیں مورچے کے اندر اور کوئی بم آ کے ان کے اوپر گر جاتا ہے, ایسے افراد شہید کا ثواب بھی پائیں گے اور شہادت کے جتنے فقہی احکام ہیں وہ بھی ان کے اوپر لاگو ہوں گے. اسی اعتبار سے جو بارودی سرنگیں ہوتی ہیں, جو بارودی سرنگیں ان پہ پاؤں لگنے سے جو افراد شہادت پا جاتے ہیں یا اس کی صفائی کے دوران تو ان کے اوپر سے بھی غسل اور کفن یہ ثابت ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر بھی وہی احکام لاگو ہوں گے. البتہ مثلا دشمن حملہ کر دیتا ہے کسی شہر کے اوپر اور ایک زمانہ تھا جیسے انڈیا کے ساتھ مثلا جنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے آ کر کراچی کے اوپر مثلا بمباری بھی کی تھی, تو کبھی کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ شہر کے اوپر دشمن آ کے حملہ کرے اور اس بمباری کے نتیجے میں شہری شہید ہو جائیں تو ثواب شہید کا پائیں گے, البتہ شہید کے فقہی احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے وہ بھی اس سے پہلے بیان ہو چکا کئی دفعہ کہ جو بھی افراد ٹاؤن کے اندر جو پلیگ ہے اس کی وجہ سے جو جن کو موت آتی ہے یا مثلا دستوں کی بیماری میں کوئی جو انتقال کرتا ہے, پیٹ کی بیماریوں میں جو لوگ مرتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں یا ملبے تلے دب کر جیسے کہ زلزلوں وغیرہ کے اندر یا اسی طریقے سے جل کر مرنے والے یا وہ تمام عورتیں کہ جو کہ ڈلیوری کی وجہ سے جن کو موت آ جاتی ہے, یہ اگرچہ ثواب شہید کا پائیں گے لیکن شہیدوں کے فقہی احکام ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے. اچھا اتنا اور بتا دوں کہ ایک دفعہ اس سے پہلے بات بیان ہو چکی ہے, البتہ وہ بالکل اتفاقی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ شہید کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت کا واجب ہونا. کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, شہید کی میت کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا, البتہ جیسے آغا کوئی ہیں اور آغا چیستانی ہیں, شیخ زواد تبریزی ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ بہرحال شہید کی میت کو ہاتھ لگانے سے بھی ہمارے اوپر بہرحال غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اچھا پھر کچھ علماء کا نظریہ یہ بھی ہے جیسے کہ امام خمینی وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور واجب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک چیز بس اور, کیونکہ کفن کے مسئلے تو ہم بیان کر چکے, ایک اور مسئلہ اس کے اندر پیش آتا ہے وہ ہے ہنوت کرنے کا مسئلہ. ہنوت بڑی ہے نون واؤ اور توئے, جو 7 مقامات سجدہ ہیں ان کو ہنوت کرنا واجب ہے, یعنی ان کے اوپر کافور کا ملنا, کافور لگانا. اچھا یہ جو 7 مقامات سجدہ ہیں اس میں اکثر علماء نے کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ترتیب کا خیال رکھا جائے گا, مثلا آقا کو یہ فرماتے تھے, لیکن اس کے علاوہ جتنے اور دیگر مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں کوئی سی ترتیب کا ہونا معتبر نہیں, یعنی آپ جیسے بھی جس میں بھی چاہیں پہلے کر دیں, جس کو بھی چاہیں بعد میں ہنوت کر دیں. تو یہ 7 مقامات سجدہ ہیں, ان کے اوپر تھوڑا سا کافور لگایا جائے گا. مستحب ہے کہ ناک کی لو جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کافور لگایا جائے, इसके अलावा जो मसलन मुस्तैबात में है कि बगलों में लगाना आर्म पिट्स में, या मसलन सीने के ऊपर काफूर का लगाना, जितने भी जोड़ हैं उनके ऊपर काफूर का लगाना, और ये सब कुछ जो काफूर लगाया जा रहा है असल में ये खुशबू के लिए। और अगर काफूर ना मिले तो कोई और खुशबू काफूर की कायम मुकाम नहीं हो सकती, फिर हुनूत किए बगैर ही दफन कर देना होगा मरने वाले को। यानी बहरहाल हुनूत करना ये वाजिब है, लेकिन बहरहाल अगर काफूर कहीं दस्तियाब ना हो तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि काफूर खुशबू के लिए लगाया जाता है। जिस तरीके से कफन के मुतालिक में हमने बात कही थी कि अगर काफूर और जरीरा ना मिले तो कोई और खुशबू इस्तेमाल ना की जाए, इस्तेमाल करना मकरूह है, सिवाय आगाखोई के। आगाखोई कहते थे एहतियात वाजिब के बिना पर कोई और खुशबू इस्तेमाल करनी हराम है बल्कि कफन के लिए। तो एक मसला इसके अंदर हुनूत का ये भी आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हुनूत है, क्योंकि बस ये फिक्र मसले आज की जो नशिस्त है हमारी इसमें निस्बतन ज्यादा आएंगी, और जो शायद एक अगली नशिस्त हो कि जिसके अंदर दफन वगैरह के जो मसाइल होते हैं वहां की हद तक फिक्र मसले जरा निस्बतन ज्यादा होंगे, और उसके बाद जब दफन कर देंगे उसके बाद पहली रात और बरज़ख़ी जिंदगी की मसरूफियात, वो उस पर फिर हम जरा मसाइल से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे और एक उस पर अलग तरीके से गुफ्तगू को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन अभी ये जो कम से कम खासतौर पर दो नशिस्तें आज की और एक अगली बातें हैं, इसके अंदर निस्बतन ज्यादा है। कितना काफूर लगाया जाए आज़ाए सिजदा पर, तो इसका जवाब ये कि फकत इतना काफूर लगाना कि उर्फन ये कहा जाए कि आपने काफूर मला है, यानी बहुत थोड़ा सा भी अगर काफूर लगा दिया जाए। और ये बात भी मुस्तहब है कि अगर काफूर के साथ खाकी शिफा को भी मखलूत कर दिया जाए तो सवाब और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मुर्दे को बहुत ज्यादा सवाब और फायदा मिलता है। अलबत्ता अगर काफूर के साथ खाकी शिफा को आपने मखलूत किया और मिक्स किया तो फिर उसको उस जगह पे नहीं लगाएं जहां पर लगाने से खाकी शिफा की तौहीन महसूस हो, मसलन पांव के जो बड़ी उंगलियां हैं इसके ऊपर नहीं लगाएं फिर, क्योंकि फिर ये बहरहाल तौहीन शुमार होगी खाकी शिफा की अगर उसके साथ मखलूत किया है। अच्छा, अब चाहे औरत हो या मर्द, छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, सबको काफूर लगाया जाएगा सिवाय उन अफराद की जो कि हालत एहराम में इंतकाल कर जाते हैं, उनको हुनूत करना जायज नहीं। ये बस एक मसला इसके अंदर याद रखने वाला है। वैसे सब मुर्दों को चाहे वो बच्चे हों या बड़े उनको जरूर काफूर लगाया जाएगा सिवाय हालत एहराम वाले, हालत एहराम में इंतकाल करने वाले शख्स के। अच्छा, काफूर कब लगाएं? देखिए, वैसे तो कभी भी लगा सकते हैं, कफन पहनाने से पहले भी काफूर लगा सकते हैं, कफन पहनाने के दरमियान में भी काफूर लगा सकते हैं, और कफन मुकम्मल तौर पर पहनाए जाने के बाद भी काफूर लगा सकते हैं। अलबत्ता सबसे बेहतर यह कि कफन पहनाने से पहले काफूर लगा दिया जाए, ये सबसे बेहतर है। और इतना ज्यादा इस सिलसिले में अहमियत है कि देखिए, अगर कोई शख्स हुनूत करना भूल जाए मुर्दे को, यानी काफूर लगाना अगर भूल गए और दफन कर दिया और बाद में याद आया कि अरे काफूर तो लगाने से रह गया, तो अगर हतक ना हो मुर्दे की तो वाजिब है कि कब्र को खोदा जाए, अलबत्ता मैयत को बाहर ना निकाला जाए बल्कि कब्र में कोई शख्स अंदर उतर जाए और वहां हुनूत कर दे, वहां पर काफूर लगा दे, मैयत को अलबत्ता बाहर ना निकाले। लेकिन है इतना अहम मसला हुनूत करने का कि जो खुशबू लगा के तैयारियां करवा के जो भेजा जाने वाला मसला है, यह है इतना अहम। अच्छा, अब ये बात भी बीच में रह ना जाए नमाज जनाजा से पहले पहले, क्योंकि नमाज जनाजा के अंदर हम ये देखते हैं कि मैयत रखी हुई होती है और खवातीन भी एक मुकाम पर होती हैं और बहुत ज्यादा आवाजें भी आ रही होती हैं, तो इसके भी थोड़े से हम मसले बयान कर दें मैयत पर रोने के। देखिए, मैयत पर रोना हराम नहीं है, ख्वाह आवाज से ही क्यों ना रोया जाए, ये एक मसला है। और ये इस वजह से भी उलमा ने बल्कि कहा है कि मैयत पर रोना मुस्तहब भी है, चाहे अपने गुमराह साथी की मौत पर ही क्यों ना रोया जाए, वो गुमराह था फिर भी उसकी मौत के ऊपर रोना सवाब रखता है। और रोने से एक फायदा यह है कि आतिशे गम जो है वो सर्द पड़ जाती है। अच्छा, अब वो जो बहुत हदीस सुनने में आती है और बड़ी मशहूर कर दी गई है वहाबियों की तरफ से, अलमैयत युअज़्ज़िबु बुकाए अहलिही, कि मैयत के घर वालों के रोने से मैयत को तकलीफ पहुंचती। ये बहुत सारी एक आयत है जो बहुत सारे सूरों में, सूरह अनाम में भी है, बनी इसराइल में भी है, सूरह फातिर में भी है, सूरह ज़ुमर में भी यही एक आयत मुख्तलिफ जगहों पर रिपीट हुई है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का आमाल का बोझ ना उठाएगा। तो रो कोई और रहा है और मैयत को तकलीफ हो रही है, मैयत को अजाब दिया जा रहा है, ये इस किस्म की रिवायतें पाए एतबार से साबित हैं और ये मशहूर ज्यादा कर दी गई हैं वहाबी हजरात की तरफ से। हाँ, अलबत्ता किसी के इंतकाल के ऊपर शिकवा शिकायत करना और हद से ज्यादा शिकवा शिकायत करना परवरदिगार से, ये उलमा ने लिखा है कि ईमान में कमी की भी अलामत है और इसके साथ साथ अकल में कमी की भी अलामत है। परवरदिगार आलम के फैसलों पर, उसकी कज़ा के ऊपर राजी बा रज़ा रहना, ये मोमिन का शियार है। तो उसके अंदर शिकवा शिकायत करते रहना या इस कुसन के कोई अल्फाज इस्तेमाल करना, मसलन वैलुन, अरे मैं तो तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, इस कुसन के अल्फाज इस्तेमाल करना उलमा ने हराम करार दिया। इसी तरीके से अपने चेहरे को पीटना या अपने चेहरे के ऊपर तमाचे लगाना, ये भी उलमा ने इसको भी हराम करार दिया। इसके अलावा औरतों का अपने चेहरे को नोचना या अपने जिस्मानी आज़ा को नोचना, इसमें भी अक्सर उलमा का ये कहना है कि कसम का कफारा वाजिब हो जाता है। कुछ उलमा के नजदीक वाजिब नहीं होता है, कुछ के नजदीक वाजिब हो जाता है। तो बहरहाल कसम का कफारा, जो कसम तोड़ने का जो कफारा होता है, या इसी तरीके से अपने बालों को नोचने का भी कुछ उलमा ने कफारा बयान किया। मैं भी उसकी तफसील में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसमें बड़ी तफसील है और डिटेल है। अच्छा, नोचना या उखाड़ना इसके अंदर एक चीज होती है और एक और है, अरबों में ये चीज पहले कॉमन हुआ करती थी, अब तो शायद नहीं है, कि औरतें गम में बालों को कैंची से काटती थी, लेकिन वो भी उलमा ने लिखा है, लेकिन वो क्योंकि अब पेश नहीं आता तो इस वजह से हम वो भी बात बयान नहीं कर रहे। तो बहरहाल ये सब चीजें कि जिससे बहुत ज्यादा खुदा से शिकवा शिकायत जाहिर हो, अपने जिस्म को इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, ना सिर्फ ये कि बाज़ोकात ही हराम हो जाता है बल्कि कफारा भी वाजिब कर देता है। और किसी शख्स की भी मौत पर हद से ज्यादा चीखना और चिल्लाना, ये भी इस वक्त मौजूद तमाम उलमा जिनकी तकलीर हो रही है एहतियात वाजिब की बिना पर हराम करार देते हैं। मैयत के ऊपर आवाज से रोना हराम नहीं, हद से ज्यादा मामूल से बहुत ज्यादा आवाज को बुलंद करना हराम। बाजों का देखने में आता है, यहाँ पे अंजोली के अंदर ही आप कभी अगर आई हो तो इतनी ज्यादा तेज आवाज के, मसलन शायद के पड़ोस के घरों के अंदर तक आवाज जाती हुई है, मामूल से बहुत ज्यादा बुलंद आवाज, एहतियात वाजिब की बिना पर इसमें रुजू करके किसी और जगह को ऐसा मर्जी भी नहीं है जो इजाजत देता हो, ये हराम। अच्छा, इसी तरह की जैसे रान पर हाथ मारना, ये भी शदीद मकरूह है, गम में रान पर हाथ मारना, और इसी तरह से ये भी मुस्तहबात के अंदर से एक चीज है कि अपनी औलाद की मौत पर खुदा की हम्द करना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये मुस्तहबात में से, और कलमाए इस्तिरजा को बुलंद करना, अलिफ सीन ते रे जीम अलिफ ऐन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कलमा इस्तिरजा कहलाता है, इसको बुलंद करना ये भी मुस्तहबात में से। और ये खास तौर पर बेटे की मौत के लिए, बेटे की मौत पर खुदा की हम्द करना और ज्यादा ताकीदी मुस्तहब। और ये भी मुस्तहबात में से है कि औलाद के मरने के बाद, और रिवायात में अलल खसूस बेटे की मौत के सिलसिले में ये है कि खुदा से नेमुल बदल की दुआ करना, ये भी मुस्तहबात में से। और बल्कि खाली मौत के सिलसिले में नहीं है कलमा इस्तरजा, जिस किसी भी मुसीबत और परेशानी के अंदर आप गिरफ्तार हो उस वक्त कलमा इस्तरजा बुलंद करना ही मुस्तहबात में से। हाँ, अलबत्ता बहुत से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मसलन मौत के वक्त वहां ना पहुंच सके, मरने वाले के जनाजे में किसी दूर मुल्क में थे, फिर वहां से वो आए हैं, तो उसके बाद आकर बहरहाल गले मिलकर रोते भी हैं और मरने वाले को अपना जो मरहूम रिश्तेदार है वो भी याद आ जाता है। बहरहाल उलमा का ये कहना है कि अगर ताजियत उसकी पेश की जाए बहुत दिनों के बाद तो ये मकरूह है, क्योंकि उसको मरने वाले की याद आएगी और पुराना गम उसका ताजा हो जाएगा। तो बहरहाल ऐसी हल्के फुल्के अंदाज में कि उसको उस तरह से रोना पीटना ना किया जाए कि जिस तरह से कि उसका पुराना गम जो है वो दोबारा ताजा हो जाए। अच्छा, अगर कभी भी, एक बात और याद रखिए, कभी भी इंसान को अपना कोई पुराना गम याद आ जाए तो उस वक्त भी कलमा इस दर्जा बुलंद करना ही मुस्तहबात में से। बहुत पहले हमारे किसी अजीज का इंतकाल हुआ, बहुत पहले हमारे किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, कलमा इस दर्जा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अजिरनी अला मुसीबती वखलुफ अलैया अफजल मिनहा, ये जुमले कहना, ये बहुत ज्यादा एक तो मुसीबत, वो जो रिवायत में मिलता है कि अगर किसी ने ये जुमला कहा जो भी मैंने आपके सामने पेश किया, और उसकी जगह आप छोड़ दीजिएगा अपने नोट्स में, हम बाकायदा इसको लिख देंगे, कभी भी कोई पुरानी मुसीबत आपको याद आई और आपने ये जुमला कह दिया तो वो उस वक्त का जो अजर व सवाब, जो जिस वक्त वो ताजा ताजा मुसीबत वारिद हुई थी या वो मौत हुई थी जो लवायकीन को मिल रहा था, पूरा वही सवाब इस वक्त भी उसको हासिल हो जाएगा। ये बहुत ही आम है ये वाली जो, अगर ये दुआ पढ़ दी जाए। और ये भी है कि परवरदिगार आलम उस नुकसान का मदावा भी करेगा अगर वो पुराना गम याद आ जाने के बाद उस वक्त ये वाली दुआ अगर पढ़ ली जाए, सवाब भी पूरा वही वाला मिलेगा और उसका मदावा भी खुदा करेगा। और ये भी है कि जब कभी भी इंसान को अपनी कोई मुसीबत या पुराना गम याद आए तो पैगंबर इस्लाम की रहलत और वफात को याद करे। पैगंबर इस्लाम की रहलत और वफात को कहा जाता है मुसीबत उज़्मा थी पैगंबर का इस दुनिया से रुखसत होना। तो बहरहाल ये उस वक्त भी करना मुस्तहब है जब भी कभी कोई अपना पुराना मुसीबत या गम याद आए। इसी तरीके से जो भी अहले मुसीबत हो, यानी जिनके यहां मौत वाकई हुई है, उन लोगों के लिए उस मुसीबत में सजाब लगाना, सुरमा लगाना, या मसलन मेकअप करना, बालों में तेल डालना, या कंघी वगैरह करना, इससे मरने वाले के लवायकीन इज्तनाब कर, यानी खासतौर पर जिस वक्त जिस दिन ये मुसीबत वाकई हुई हो। हराम तो नहीं है, मकरूह भी नहीं है, बल्कि बस ये रिवायत, ये मसाइल के अंदर कही गई है बात कि इससे इज्तनाब करें, ये ज्यादा बेहतर। इसी तरीके से मरने वाले के घर में खाना खाना, ये बड़ा शदीद मकरूह, बल्कि रिवायत में मिलता है कि तो जमाने जाहिलियत की यादगारों में से एक चीज है, जमाने जाहिलियत की यादगार चीजों में से एक है कि मरने वाले के घर खाना खाया जाए, और शदीद मकरूह में से ये चीज आती है। और इसी तरीके से ये बात भी मकरूह है कि मरने वाले के पास फकत औरतों को छोड़ा जाए। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि औरतें फिर जरा रकीकुल कल्ब होती हैं इस मामले में, इस मामले में खासतौर पर रकीकुल कल्ब होती हैं और काफी ज्यादा गम अंदोह का मुजाहरा करती हैं और चीखने चिल्लाने की आवाजें ज्यादा बुलंद होती हैं, जिससे मरने वाला परेशान होता है। तो बहरहाल मकरूह है कि फकत औरतों को उसके पास तनहा छोड़ दिया जाए। और इसी तरीके से बाकायदा जो उर्वतुल वुस्का और तहरीरुल वसीला के अंदर भी इमाम खुमैनी वगैरह ने लिखा है कि इसी तरह से हालत एहतजार में भी छूने से मरने वाले को शदीद तकलीफ होती, यानी हालत एहतजार में उसको उसके, मैंने एक दफा पहले बताया था, उसके आजा की हरकत को रोकना या उसको छूना, बल्कि छुए भी नहीं उसको, इसको छुए भी नहीं, वरना ये मकरूहात के अंदर से। इसके अलावा गुस्ल देने वाले जो अफराद होते हैं उनका भी मैयत के पास ज्यादा देर रुकना ये कराहियत रखता है, ये भी ज्यादा देर उसके पास ना रुकें जो मैयत को गुस्ल दिया कर दें। अच्छा, अब ये चंद एक छोटे छोटे से जमीनी मसले थे जो मैंने टुकड़ों की सूरत में आपके सामने पेश किए, अलबत्ता बहरहाल क्योंकि ये मोरद तला है और इनकी जरूरत पेश आती है। अब एक फकत चीज अहम रह गई है और जिसका मैंने पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर जिक्र भी किया था कि वो कफन में साथ रखी जाती है जिसका नाम है जरीदतैन। बड़ा ताकीदी मुस्तहब, बड़ी ताकीद आई है सरसब्ज तरल ताजा लकड़ियां रखना, یا ڈنڈیاں جس کو کہا جائے، اس کو سبزہ ہمراہ بھی کہتے ہیں. اچھا کن افراد کے ساتھ یہ چیز رکھی جائے گی؟ دیکھیے سب افراد کے ساتھ رکھی جائے گی. اس کا استحباب اور تاکیدی مستحب ہونا کہ سب افراد کے لیے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، خواہ نیک ہوں یا بد، بلکہ خواہ ایسے افراد ہی کیوں نہ ہوں جن کے متعلق عذاب قبر ہونے کا احتمال بھی نہ ہو، ان کے ساتھ بھی رکھا جائے. خواہ بچہ ہو یا بوڑھا، سب کے ساتھ رکھی جائیں گی. مثلا کوئی اگر بچہ نابالغت کے زمانے میں انتقال کر گئے تو اس کو تو عذاب نہیں ملے گا. تو علماء نے بہرحال مسائل کے لحاظ سے ایک بات کہی کہ پھر استحباب بچے کے لیے تو نہیں رہتا، البتہ رجا کی نیت سے بچے کے ساتھ یہ چیز رکھی جائیں گی، دو تر و تازہ لکڑیاں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ لکڑیاں تر و تازہ رہیں گی، مردے کے اوپر سے عذاب نہیں ہوگا. اچھا، اور باقاعدہ روایتوں میں بھی قبر میں مردہ ہے، پیغمبر اسلام نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا کہ اس کے اوپر عذاب قبر، اس پہ عذاب ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام نے ایک تر و تازہ لکڑی اٹھائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس کے سرہانے لگایا اور ایک ٹکڑا اس کی پائتی میں لگایا پاؤں کی طرف، اور فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں تر و تازہ رہیں گی، عذاب اس کے اوپر سے برطرف رہے گا، بلکہ کلی طور پر بھی برطرف ہو جائے گا. ہاں ابھی آگے چل کے آ رہی ہیں ساری چیزیں، مکمل طور پر برطرف ہو جائے گا. کہا کہ یا تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی یا کلی طور پر برطرف ہو جائے گا. اور یہ بات بھی کہی گئی کہ بلکہ انصار میں سے جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے اس کے رشتہ داروں کو بلوایا اور اس کے لواحقین کو کہا کہ خزرو صاحبکم فما اقل المخزرین یوم القیامہ، کہ اپنے مردے کو سرسبز و شاداب کرو، کیونکہ بہت کم لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے جو سرسبز ہوں گے. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اس بات کہنے سے کیا مراد ہے کہ مردوں کو سرسبز کرو؟ کہا ان کے ساتھ سرسبز و تازہ لکڑیاں رکھو جو ان کے گلے اور کندھے کے درمیان میں رکھی جائیں. ابھی میں اس کے آگے چل کر تفصیل بتانے والا ہوں. اور روایت کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ان کے ساتھ سرسبز و شاداب لکڑیاں رکھی جائیں قبر میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. حضرت آدم فرماتے تھے، انہوں نے جو وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ یہ تر و تازہ لکڑیاں رکھی جائیں تاکہ مجھے مانوسیت رہے. اچھا پھر اس کے بعد جو دیگر انبیاء تھے ان کے یہاں بھی سلسلہ یہ آگے بڑھتا رہا، یعنی سب یہی وصیت کر کے جاتے رہے کہ ان کے ساتھ یہ تر و تازہ لکڑیاں رکھی جائیں. پھر زمانے جاہلیت میں آ کر یہ سلسلہ متروک ہو گیا اور پھر پیغمبر اسلام نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. اور آئمہ کی بھی بہت زیادہ اس سلسلے میں تاکید آئی کہ زرارہ آ کر ہمارے پانچویں امام سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بات بتائیے کہ یہ اگر کوئی شخص یہ تر و تازہ لکڑیاں نہ رکھ سکے، تر و تازہ لکڑیاں نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے، تو پھر کیا ہو؟ تو امام نے گویا ان کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی زرارہ کی، اور کہا کہ نہیں، ہر صورت میں بہتر ہے کہ رکھی جائے، یعنی کیوں آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہی، یعنی اس طرح کا سوال کو امام نے لگا ایسا روایت سے کہ اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اتنی معمولی سی چیز کی لکڑیاں رکھی جائیں تو کیوں نہیں رکھی جا سکے. تو کہا کہ نہیں، ہر صورت میں رکھی جائیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں تر و تازہ رہیں گی، عذاب و ثواب، عذاب و حساب مردے پر سے اٹھا لیا جائے گا. قبر کا جو عذاب ہے اور اس کا جو حساب ہے وہ مردے پہ سے اٹھا دیا جائے گا. اچھا، اب ایک سوال پوچھا بھی جاتا ہے اور امام سے بھی پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے، خشک ہونے تک تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا جب تک تر و تازہ رہیں گی. اچھا، خشک جب ہو جائیں گی پھر تو عذاب شروع ہو جائے گا نا. تو امام نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بات یاد رکھو کہ قبر کا حساب اور عذاب، عذاب اور حساب دونوں کی بات امام نے کہی، ایک دن میں، ایک گھڑی میں، ایک لمحے میں، بلکہ قبر میں اتارنے سے لے کر اور جنازے کی تشییع کے لیے جو لوگ گھر واپس چلے جاتے ہیں، جب تک کہ سارا عذاب اور تمام حساب مردے کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے بعد تو بہت بڑا ٹائم ایک لحاظ سے روایت کے اندر ذکر ہو گیا کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے. وہ تو امام فرماتے ہیں کہ بہت ہوا تو جب تک تشیع جنازہ کے لوگ گھر واپس پہنچیں گے جب تک یہ سارا حساب ہو چکے گا اور تمام عذاب بھی وہ بھگت چکا ہوگا اگر اس کو عذاب بھگتنا ہے, یعنی عذاب کا جو پیریڈ جس ٹائم پہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ لکڑیاں رکھ دی گئیں تو وہ عذاب اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا اور حساب بھی اس کو نہیں لینا پڑے گا اور وہ ٹائم جو ہوگا وہ بہرحال اس سے نکل جائے گا. اچھا اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے, بلکہ امام نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ کھجور کی لکڑیاں رکھی جائیں. کھجور کی لکڑیاں, ایک تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کھجور کی لکڑی بہت دیر میں خشک ہوتی, اور امام نے فرمایا کہ انشاءاللہ ان لکڑیوں کے رکھے جانے کے بعد میت کا حساب اور عذاب برطرف ہو جائے گا. فلا یصیبہ عذاب ولا حساب جفوفہما انشاءاللہ تعالی. وسائل الشیعہ کے اندر یہ والی روایت ہے کہ عذاب بھی برطرف ہو جائے گا اور حساب بھی برطرف ہو جائے گا. اچھا اب وہ جو آپ کی طرف سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کون سی لکڑیاں, تو امکانی ترجیحات ہیں اس کی کچھ. پہلی ترجیح اور پرائیورٹی تو کھجور کے درخت کی لکڑی. کھجور کا اگر درخت نہ ملے تو پھر بیری کے درخت کی لکڑی کے سیکنڈ نمبر پہ, اور بیری کے درخت کی لکڑیاں بھی نہ ملیں تو پھر نیم کے درخت کی لکڑی, اور اگر نیم کا درخت بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر انار کے درخت کی لکڑی, اور اگر یہ بھی اویلیبل نہ ہو تو کسی بھی درخت کی سرسبز و شاداب لکڑی. جب دیکھیے عام اتنا ہے کہ نہ عذاب اس کو ہوگا اور نہ کوئی ثواب اور نہ ہی کوئی حساب اس کو دینا ہوگا, پھر بھی اگر جیسے کہ زورانہ نے پوچھا کہ اگر نہیں اویلیبل ہوں تو امام نے کہا کہ یعنی کیوں نہیں اویلیبل ہوں, یعنی اتنی ترجیحات کو کوئی تو ایک درخت ملے گا کسی جگہ, اور جب اتنا عام ترین چیز ہے مردے کے لیے تو پھر اس سلسلے میں کوتاہی کیے جانے کی کیا وجہ ہوگی. تو بہرحال ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا پھر یہ سوال دوسرا ہوتا ہے کہ آخر کتنی لکڑیاں ہوں, تو سب سے زیادہ بہتر ہی کہ دو لکڑیاں ہوں. دو, ایک مردے کے دائیں طرف رکھ دی جائے اور ایک مردے کے بائیں طرف رکھ دی جائے. البتہ اگر صرف ایک ہی لکڑی کا بھی اویلیبل ہو سکے تو پھر اس کو رائٹ سائڈ پر ہی رکھ دیا جائے مردے کے دائیں طرف. اچھا اب مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ وہ لکڑیاں کیسی ہوں, تو وہ تو ابھی بیان ہوا کہ تر و تازہ ہونی چاہیے. اگر خشک ہیں وہ تو یہ استحباب پورا نہیں ہو سکے گا, یعنی اس کو تر و تازہ ہونا ہی ضروری ہے. اور اسی اعتبار سے اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, جیسے کہ ہم نے اس کے اندر بھی بہت سارے آپ کو سوالات کے وہ بتائے تھے کہ مثلا اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے ان لکڑیوں کا. دیکھیے اس وجہ سے بھی ان کی سب تفصیل میں روایت میں امام بھی گئے ہیں, پیغمبر اسلام نے بھی اتنی تاکید کی ہے, کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے تو اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے. لمبائی کتنی ہونی چاہیے, لمبائی کے متعلق یہ ہے کہ اس کی لمبائی بہتر ہے سب سے زیادہ کہ کوہنی سے لے کر اور ہاتھ کی درمیانی انگلی کا جو سرا ہے یہاں تک اس کی لمبائی ہونی چاہیے, کوہنی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی جو فل ایکسٹینٹ میں جو ہوتی ہے اتنی کم سے کم اس کی لمبائی ہو. اچھا اگر اتنی لمبائی نہ ملے, مثلا اتنی لمبی لکڑی نہیں اویلیبل ہو رہی, تو بہرحال پھر یہ استحباب اتنا اس وقت ملے گا کہ جب کم سے کم وہ لکڑی ایک بالشت کی ہو. اچھا یہ تو ہو گئی لمبائی, موٹائی کتنی ہو, یہ تو ہے بہرحال کہ جتنی بھی اگر موٹی ہو سکے, جتنی بھی موٹی ہو سکے اتنی زیادہ بہتر ہے وہ لکڑی. اچھا اب اس کے بعد یہ بھی ثواب ہے, بہت زیادہ بلکہ تاکیدی مستحبات میں سے ہے, کہ ان جریدتین پر کچھ لکھا ہوا بھی ہو, لکھا ہونا چاہیے. اچھا اس کی کیونکہ لکڑی کے اوپر لکھنا بہت مشکل کام ہے, ذرا مشکل پیش آئے گی, تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ الگ سے کپڑے کے اوپر لکھا جائے اور اس کے بعد اس کپڑے کو ان جریدتین پر لپیٹ دیا جائے. آپ نے میرے خیال ہے اس کو دیکھا بھی ہوگا جو کفن وغیرہ کی جو کلاس ہوئی تھی. اچھا الگ سے کپڑے پر, اچھا وہ پرنٹڈ حالات میں اگر کوئی کسی نے پرنٹ کروائی ہوئی ہیں وہ دعائیں جو کہ اس کے اوپر لکھنا مستحب ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی بالکل صحیح ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس ان جریدتین پر یا اس کپڑے کے اوپر جو جریدتین پر لپیٹے جانا ہے اس پر اس مردے کا نام لکھا ہونا چاہیے اور اس مردے کے باپ کا نام لکھا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد ایک عبارت اور ہونی چاہیے, انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان الائمۃ من بعدہ اوصیاءہ. یہ ایک ہو, اس کے بعد हर इमाम का नाम उसके ऊपर एक उसी कपड़े के ऊपर लिखा हुआ हो और वो तमाम इबारतें भी लिखी हुई हों कि जिनको हम कफन के सिलसिले में जो हाशिया और जो कफन के हाशिया था और जो कफन के ऊपर लिखी जाने वाली दुआएं थी जिनका हम पिछले गुफ्तगू में जिक्र कर चुके हैं, उन तमाम को भी इन जरीदतैन वाले जो कपड़ा है इसके ऊपर भी लिखवाना वो मुस्तहब है। और एक इबारत खसूसियत के साथ और है कि जो कि शेख सूसी ने अपनी किताब मुस्तबाहुल मुतहज्जिद में लिखी है और वो भी हम आपको लिख कर दे देंगे, उसको भी जरीदतैन के साथ ही रखा जाए उस इबारत को भी। और उस बहरहाल उसके अंदर उस इबारत के अंदर ये है कि खुदा और रसूल आइम्मा की इमामत का इकरार है, अकायदे हक्का है और ये तहरीर इंसान अपनी जिंदगी में भी लिख कर रख सकता है और उस तहरीर के गवाह भी आपको रखना है। उन बाकायदा वो गवाह गवाही देंगे, यानी जो आपकी सहेलियां होंगी या रिश्तेदार होंगे या उलमा से भी सिलसिले में गवाही लिखवाई जा सकती है कि ए फुलां बिनते फुलां, यानी जो गवाह लिखेंगे उसके ऊपर हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। देखिए ये मैंने कहा कि ये जिंदगी में भी लिखवाई जा सकती है, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं उस शहादत और इकरार और उस बिरादरी के साथ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान है कि जबकि सब कुछ अल्लाह के रसूल के पास अमानतन मौजूद है, हम तुम पर सलामती भेजते हैं और तुम्हें दुआ देते हैं, खुदा की रहमत और बरकत के साथ तुमको रुख्सत करते हैं। ये बाकायदा उसके बाद ये तहरीर लपेट कर जरीदतैन के साथ रख दी जाएगी या जरीदतैन पे लपेट दी जाएगी और उस तहरीर के ऊपर वो गवाह अपना दस्तखत करेंगे और मोहर लगाएंगे। जितने भी हों इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जितने भी ज्यादा से ज्यादा, वैसे ये जो अच्छा एक अदद है जो अल्लामा मजलिसी ने भी एक दफा मुतय्यन किया था वो 40 का है। अच्छा, और फिर हाँ कपड़ा छोटा भी हो सकता है कि अगर उसको प्रिंटिंग छोटी करवा लें या अगर लिखवाना भी है तो इतनी बड़ी बहरल नहीं है, लेकिन क्योंकि कफन के ऊपर भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको अच्छी बड़ी तादाद में बताई थी तो जितना भी चाहे उसके ऊपर लपेट दिया जाए, बारीक सा छपाकर भी लपेटा जा सकता है। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद वो जरीदतैन ये जो लपेटी जाएगी चीज, ये जरीदतैन के साथ मुर्दे के दाएं तरफ रख दी जाएगी। सबसे बेहतर तो ये है कि ये तहरीर जो है काफूर के साथ जो बहरल जो भी तहरीर हो जिस जो प्रिंटिंग जो करवा रहे हैं या तो उसके अंदर काफूर मिला हुआ हो या खुद अपने हाथ से अगर लिख रहे हो तो जो भी इंक हो उसके अंदर काफूर मिला हुआ हो तो ये बहुत ज्यादा इसका ताकीद और सवाब है। और एक चीज उलमा ने और कही कि जिस कलम से लिखी जाएगी सबसे ज्यादा बेहतर है और इस बात की ताकीद है कि वो लकड़ी का कलम जो पेन हो वो लकड़ी का हो। अच्छा, अब ये जो जरीदा पेन है ये रखे कैसे जाएंगे? देखिए तफसील इसकी यूं भी इतनी अहम है कि सारा हिसाब और अजाब मुर्दे पर से बरतरफ हो जाएगा। ये आप दिमाग में रखें तो आपको फिर ये तफसील शौक से आप सुनेंगे। किस तरफ रखी जाए ये लकड़ियां? वैसे तो कहीं भी रखी जा सकती हैं पूरी खबर और जिस तरह चाहे रख सकते हैं, लेकिन एक तो वही मैंने कहा कि एक दाएं तरफ रखी जाएगी एक बाएं तरफ रखी जाएगी। बेहतरीन इनके रखे जाने का भी एक तरीका है कि सबसे बेहतर तो ये है कि ये गले और कंधे की जो हड्डी है उसके दरमियान में दाएं और बाएं रखी जाए, गले और कंधे की जो हड्डी है उसके दरमियान में, या जैसे कि आमतौर पर जो बगलों के साथ इनको आमतौर पर जो है वो रखा जाता है। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा एक और तरीका है कि एक को तो दाएं बगल के नीचे रखा जाए, जो राइट साइड की जो दाएं बगल है उसके नीचे, और दूसरी को दोनों घुटनों के दरमियान रखा जाए। इस तरह से रखा जाए कि उसका आधा हिस्सा तो पिंडली की तरफ हो और आधा हिस्सा रान की तरफ, यानी दोनों घुटनों के दरमियान में। मुश्किल तो नहीं पेश आ रही आप लोगों को? यानी इसके कई तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका तो वो है जो हमने अभी बताया, गले और कंधे की हड्डी के दरमियान में दोनों तरफ। नहीं, हाँ वो अगर इस तरह की बनी हो, लेकिन अगर सीधी सीधी भी अगर लकड़ी है तो भी इसमें कोई नहीं। आमतौर पर दो लकड़ियां जो बिल्कुल अगर सीधी भी हो तो बगल वाली जो साइड है उस तरफ दोनों तरफ रखी जा सकती है, लेकिन ये वाला जो अभी मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें एक तो तरीका ये हुआ जो हमने पहले बयान किया, और दूसरा तरीका ये हुआ कि एक को तो दाएं बगल के नीचे रख दें, ये दूसरा तरीका है, और दूसरी को दोनों घुटनों के दरमियान रख दें। इस तरह से रखें कि आधा हिस्सा उस लकड़ी का पिंडली की तरफ हो और आधा हिस्सा रान की तरफ हो। और ये भी कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ, दोनों लकड़ियों को मैयत के दाएं तरफ रख दिया जाए। एक तरीका ये भी, तीनों चारों तरीकों सही, लेकिन सबसे अच्छा वो तरीका जो हमने सबसे पहले बयान किया। अच्छा, अगर कभी भूल जाएं ये लकड़ियां रखना, भूल जाएं, तो या ये कि कब्र में उस वक्त अवेलेबल नहीं थी किसी वजह से, जो जुरारा वाली बात के बिल्फर्ज अगर नहीं कोई तरीका बन पा रहा है, अवेलेबल नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद जिस वक्त भी अवेलेबल हो उनको कब्र के ऊपर लाकर रख दिया जाए, कब्र के ऊपर रख दिया जाए। और अगर सिर्फ एक लकड़ी मिल पा रही है तो पैगंबर इस्लाम वाला तरीका इसके अंदर चलेगा, यानी इस लकड़ी के दो हिस्से किए जाएंगे, एक सिरहाने लगा दिया जाए कब्र की और एक पाइती की तरफ। और अगर दोनों लकड़ियां अवेलेबल हो जाए तो इस तरीके से एक को तो टुकड़े टुकड़े करके कब्र के सिरहाने और पाइती, और एक को फकत कब्र के ऊपर ही रख दिया जाए। तो बहरहाल ये कफन के साथ साथ ही रखी जाती है चीज। अब हमने मुर्दे को बिल्कुल तैयार कर दिया जरीदतैन वगैरह रखकर, और पूरी तैयारी के साथ मुलाकात परवरदिगार के लिए अब उसको हमें आगे रवाना करना। जब ही वो शायर ने कहा था कि बागे इरम में यारब क्या ईद हो रही है, जाते हैं जाने वाले कपड़े बदल बदल के, तो बिल्कुल अच्छे बेहतरीन कपड़े पहनाकर हमें उसको रवाना करना है, खुशबू वगैरह लगाकर परवरदिगार आलम से मुलाकात के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम मुर्दे को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ लेकर चले, एक अहम चीज बाकी रह गई और वो है नमाज जनाजा। अच्छा, पहले तो इसके अंदर हम एक आध बस मेरा ख्याल है क्योंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट और गुफ्तगू करना होगी कि आप लोगों का शायद रिजल्ट वगैरह भी है, तो बस 10 मिनट तक जितने भी छोटे मसले हम इसमें बयान कर सकें। देखिए, नमाज जनाजा ये वाजिबात में से है मुर्दे के लिए पढ़ना, और शिया हसन अशरी नमाज जनाजा पढ़े। अगर कोई मुखालिफ फिरके का कोई आदमी नमाज जनाजा उस पर पढ़ ले तो ये काफी नहीं होगी, जैसे कि अक्सर होता भी। अच्छा, औरतें भी नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं, बल्कि ये है मसाइल के अंदर कि औरतें पढ़ तो सकती हैं, अलबत्ता एहतियात मुस्तहबी के अगर मर्द मौजूद हों तो औरतें इसका एहतमाम ना करें, अलबत्ता पढ़ सकती हैं। दूसरी बात अहम तरीन ये है कि हमारी फिक्र में गायबाना नमाज जनाजा का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। ये मुखालिफ फिरके में है कि किसी जगह इंतकाल हुआ, शाहबाज का इंतकाल हुआ था सऊदी अरब में, यहां पर अक्सर लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी थी। गायबाना नमाज जनाजा का कोई तसव्वुर नहीं है, ख्वाब वो मैयत अपने ही शहर में ही क्यों ना मौजूद हो और हमारा उस जगह पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाना पॉसिबल ना। और इस तरह से मुर्दे को सामने रखा जाए नमाज जनाजा पढ़ते वक्त कि उसका सर नमाजियों के दाएं तरफ हो और उसके उसके जो पांव हैं नमाजियों के बाएं तरफ हो। अच्छा, नमाज जनाजा अगर कभी कोई पढ़ना से रह जाए, जैसे कि अक्सर मसलन अंदरूनी सिंध वगैरह में बहुत सारी जगह हैं कि जहां कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी मसलन अवेलेबल नहीं होता और मुखालिफ फिरके के लोग मसलन नमाज जनाजा पढ़ के उसको दफन कर देते हैं और बाद में मोमिनीन को इत्तला मिले, तो बहरहाल नमाज मैयत पढ़ने के लिए कब्र को खोद कर मैयत को बाहर निकालना ये जायज नहीं। अगर किसी की नमाज जनाजा इस अंदाज की पढ़ी गई या तो नहीं पढ़ी गई, या मसलन पढ़ी भी गई तो भी वो नमाज जनाजा बातिल थी, तब भी मैयत को बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि कब्रिस्तान जाकर उसकी कब्र के सिरहाने खड़ा होया जाएगा क़िबला रुख होकर और नमाज जनाजा वहीं पढ़ी जाएगी। और नमाज जनाजा में कम से कम 5 तकबीरों के साथ वाजिब है कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए। और अगर एक भी तकबीर कोई भूल गया कहना, 5 तकबीर आपके साथ नमाज जनाजा होती, एक तकबीर भी अगर कोई कहना भूल गया तो पूरी नमाज का इयादा दफन होने, अगर दफन हो चुकी है मैयत तो कब्र पर जाकर उस नमाज का पूरा इयादा करना पड़ेगा। और यहां तक हुक्म मिलता है कि वो अफराद के जिनको हाकिम शरा के हुक्म से फांसी पर लटकाया गया, फांसी पर, उनका हुक्म यह है कि 3 दिन तक उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटके रहने दिया जाए और 3 दिन के बाद फिर उसकी लाश को उतारा जाए और फिर उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। लेकिन ये फकत और फकत हाकिम शरा के हुक्म से जिसको फांसी दी जाए उसका मसला है, तीन दिन तक तो फंदे पर लटके रहने देना। हाँ अलबत्ता अगर किसी को हाकिम शरा के अलावा मसलन पाकिस्तानी कोर्ट से किसी को अगर सजाए मौत हुई है या फांसी की सजा हुई है तो उसको तो फौरन फंदे से उतारकर उसकी नमाज जनाजा पढ़नी जरूरी है, उसमें तीन दिन तक लटके रहने वाला हुक्म नहीं। और बार बार अक्सर उलमा के नजदीक नमाज जनाजे की तकरार करना ये मकरूह है। अलबत्ता ये मकरूह भी दीगर बहुत सारे मुस्तहरीन मसलन आकाए कोई के नजदीक मकरूह था, इमाम कुमैनी के नजदीक मकरूह था। हाँ अलबत्ता अगर अहले इल्म की हो या बहुत मुत्तकी परहेजगार किसी शख्स की हो और कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ने से रह गए हो तो कई दफा भी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती। अलबत्ता आगा चिस्तानी फरमाते हैं इसमें उलमा और मुस्तकी या आम अफराद की कोई कैद नहीं है और बार बार नमाज जनाजा का पढ़ने की कराहियत होना मेरे नजदीक साबित नहीं, आगा चिस्तानी फरमाते हैं। तो बहरहाल कुछ उलमा के नजदीक मकरूह है बार बार पढ़ना और कुछ के नजदीक मकरूह नहीं। अच्छा वैसे तो ये जो नमाज जनाजा है वैसे तो वाजिब किफाई है, वाजिब किफाई है यानी कोई एक भी पढ़ते तो साबित हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर हमारा दिल चाह रहा है उसी वक्त हमें मतलब कोई मुस्तहब नमाज पढ़ना है, कोई कजा वाजिब नमाज पढ़नी और उसी वक्त नमाज जनाजा भी हो रही तो इतनी ज्यादा इसकी ताकीद है कि मुस्तहब नमाज के ऊपर ये नमाज जनाजा मुकदम है, हत्ता कि अपनी कजा वाजिब नमाज के ऊपर भी ये नमाज मुकदम है, चाहे हम पर इस वक्त वाजिब भी नहीं है नमाज जनाजा पढ़ना, मुस्तहब सवाब मिलेगा और हमें उस वक्त कोई अपनी कजा नमाज मस्जिद में पढ़नी मुकदम है कि जाइए पहले नमाज जनाजा पढ़िए फिर उसके बाद आकर अपनी नमाज पढ़िएगा। और मुख्तसर तरीन इसका एक नमाज जनाजा का बस एक तरीका है, आप सोचती हूँ कि नमाज जनाजा बहुत मुश्किल नमाज है, जी नहीं, पांच तकबीरात हैं, नियत करें कि भाई मैं किसकी नमाज जनाजा पढ़ रही हूं, अल्लाह अकबर पहली तकबीर हो गई, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहु अकबर दूसरी तकबीर हो गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहु अकबर तीसरी तकबीर हो गई, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात अल्लाहु अकबर चौथी तकबीर हो गई, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहाज़ल मैयत अगर मर्द की है और अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहाज़िहिल मैयत अगर औरत की है अल्लाहु अकबर नमाज जनाजा खत्म। मुख्तसर तरीन वाजिब तरीका है नमाज जनाजा, बहुत ही आसान, पहली तकबीर के बाद शहादतैन है, फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद है, तीसरी तकबीर के बाद तमाम मोमिनों मोमिनात के लिए मगफरत की दुआ है और फिर चौथी तकबीर है और फिर अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहाज़िल मैयत या हाज़िल मैयत पांचवी तकबीर है और उसके बाद नमाज जनाजा खत्म। अलबत्ता इसके अलावा जितने भी आप वो सुनती हैं अहकाम वो और जितने भी इसके अंदर कलिमात सुनती हैं वो बहुत ज्यादा सारे के सारे मुस्तहबात हैं और ताकीदी मुस्तहबात भी हैं। तो बहरहाल नमाज जनाजा के अंदर तो जितने भी मुस्तहबात हों उसका सवाब पढ़ने वाले को भी और जो पढ़ा रहा है उसको भी मिलेगा। अच्छा बस ये सिर्फ एक आध मसला, क्योंकि मैं बहुत सारे देखिए बहुत से आप गालिबन ये समझती होंगी कि बहुत सारे फिक्री मसले ऐसे हैं जो आप लोगों से बराह रास्त मुतालिक भी नहीं, जैसे कि बल्कि हमने अभी कहा और आगे चल के एक और मसले में जब तशिया जनाजा के मसाइल होंगे तो सब भी बयान करेंगे कि औरतों के लिए तो तशिया जनाजा में शिरकत भी मकरूह है और खास तौर पर जवान औरतों के लिए तो ये कराहियत और शदीद हो जाती। तो बहरहाल इस लिहाज से तो आपका इतना इसमें इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा होगा, लेकिन जैसे कि आपसे एक गुफ्तगू में बिरादर वसीम इमाम ने भी कहा था कि लेकिन आपको इस सिलसिले में इकदाम ये करना है कि आपको इस पैगाम को आगे पहुंचाना है अपने भाइयों शोहरों बेटों और इन सबको अपने दीगर रिश्तेदार मर्दों को इस बात की तरगीब दिलानी और ये मसाइल उन तक पहुंचाने, क्योंकि ये तमाम मसले सुनने के लिए लोग इतने ज्यादा रागिब भी नहीं होते इस किस्म के मसाइल के लिए और ना इसका कहीं ऐसा एहतमाम होते देखा गया। तो बहरहाल क्योंकि अब आप यहां पर हासिल कर रही हैं तो अपने लिहाज से अपने घर वालों के अंदर आपको ये वाले मसले बयान करने, इतना बात और बता दी जाए कि अगर मैयतें जैसे कि अब बहुत सारे बम धमाके के वाकयात हो जाते हैं और एक साथ कई मैयतें जमा हो जाती हैं, इज्तिमाई नमाज जनाजा भी पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल जायज है कि इज्तिमाई नमाज जनाजा मसलन पांच दस अगर मैयतें हों, बस उसमें फर्क ये होगा कि जमा की चीजें इस्तेमाल किए जाएंगे और वो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। البتہ اس کے اندر بھی مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو ہر میت کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے. البتہ بہرحال یہ کہ اگر اجتماعی سیخوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نماز جنازہ ہو جائے گی. نماز جنازہ کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے جو مسائل کے لحاظ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ نماز جنازہ کو بیچ سے حالت اختیار میں بھی توڑ سکتے ہیں. البتہ ایسی نوبت تو پیش نہیں آتی کبھی، لیکن بہرحال اس کو توڑا جا سکتا ہے. اور یہ نماز جنازہ مسجدوں کے اندر قائم کرنا یہ مکروہ ہے سوائے مسجد الحرام کے. اکثر یہ ہوتا ہے حاجی جو انتقال کر جاتے ہیں یا مکے میں بھی کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کا جنازہ لایا جاتا ہے مسجد الحرام میں اور وہاں نماز جنازہ ہوتی ہے. وہاں پر یہ کراہیت نہیں ہے، لیکن دیگر عام جتنی مسجدیں ہیں وہاں پر یہ نماز جنازہ پڑھنے کی کراہیت ہے. بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اور بس اس میں بات اور بیان کر دی جائے کہ عام طور پر جتنی بھی مسجدیں جو عام نماز جماعت ہوتی ہیں، جو نماز پنجگانہ کی نماز جماعت ہوتی ہیں، اس میں پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور جو نماز جنازہ ہو رہی ہے اس میں سب سے آخری صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اور یہ بات بھی بڑے تاکیدی، اتنی زیادہ تاکید تو بہرحال نہیں آئی، لیکن بہرحال مستحبات میں سے ہے کہ جب تک نماز جنازہ ختم ہو چکی ہو اور جب تک میت کو کاندھوں کے اوپر نہ اٹھا لیا جائے تب تک اسی جگہ پر کھڑے رہنا مستحب ہے، جب تک حرکت نہ کرے وہ. لیکن واجبات میں سے تو نہیں، البتہ فقط مستحبات میں سے ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فقط اتنی دیر تک، کم سے کم جب تک کہ میت کو کاندھوں پر نہ اٹھا لیا جائے، جب تک نماز جنازہ پڑھنے والا شخص وہیں پر کھڑا رہے. اور ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے کہ جو شخص بھی میت کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جبرائیل 70 کروڑ فرشتوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور 70 کروڑ دفعہ اس کے جو ہے اس کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے اور اس کے اول و آخر کے تمام گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. اچھا، بلکہ بہت سی روایات کے اندر تو اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نہ صرف کہ گزشتہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں بلکہ آئندہ کے گناہ بھی خدا اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، یعنی آئندہ زندگی کے گناہوں تک کے متعلق. اور بہرحال اب اس کے اندر ابھی نسبتاً 2-4 مسئلے اور باقی رہ گئے ہیں، لیکن کیونکہ 10 منٹ کا ایک وقفہ دینا ہے آپ کے ریزلٹ کے لحاظ سے اور کچھ شاید اناؤنسمنٹ بھی ہو اور اس کے بعد ایک فوراً بعد آپ کی ایک دوسری کلاس بھی ہونی ہے، مجھے بھی ایک دوسری کلاس لینی ہے، تو بہرحال آج کی حد تک ہم دو گفتگو اختتام پذیر کرتے ہیں. کچھ سوالات آ گئے ان کے جوابات انشاءاللہ اگلی دفعہ تحریری طور پہ دے دی جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ جل یا صاحب السماء. اللہ جل